मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 6 मई 2015 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। इसी के साथ ही मित्रों, मैं स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं मानिक चंद शाह, आप कटिहार बिहार से हैं, राजेंद्र यादव बस्ती उत्तर प्रदेश से हैं और सोनाली कौशल, आप ग्वालियर से हैं। तो मानिक चंद, राजेंद्र और सोनाली, मैं अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से आप तीनों नौजवान साथियों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सब आए, हम सब मिलकर कुछ करने की कोशिश करेंगे और मित्रों, अब तो मुझे लगने भी लगा है कि हमारी ये कोशिश बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि जिस तरह से फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच से मुझे ईमेल मिल रहे हैं और वो जितने क्रांतिकारी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, सच में मुझे बहुत ही आत्मसंतोष होता है और आप जैसे नौजवान साथियों पर भरोसा भी होता है कि यदि मिलकर काम किया जाए, सही तरीके से किया जाए, संकल्प लेकर किया जाए, तो नतीजे सामने आते ही हैं। तो मित्रों, आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है और आज मैं शुरुआत करता हूं अपने मोटिवेशनल सेक्शन की एक मेल से। दोस्तों, ये मेल है मनीष बंसल का जो न्यू दिल्ली से हैं। आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिनों पहले जब यूपीएससी में आईएएस के इंटरव्यू शुरू हुए थे, मैंने आप लोगों को राय दी थी कि जिनके लिए भी संभव हो सके प्लीज वो अपना एक दिन यूपीएससी के दफ्तर में जाकर जरूर गुजारें और वहां से जब स्टूडेंट इंटरव्यू देकर बाहर निकले तो उनसे बातचीत जरूर करें। देखेंगे कि उससे आपको तैयारी करने के कितने सारे तरीके पता लगेंगे, आप में कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और बहुत सारी चीजों के मामले में आपकी दृष्टि साफ होगी। तो मेरे पास मेल आ रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट जा रहे हैं वहां और उनको इसका लाभ मिल भी रहा है और मैं गुजारिश करूंगा अपने दूसरे स्टूडेंट से भी कि जिनके लिए भी संभव हो, संभव होने का मतलब सिर्फ मेरा कहने का केवल यह है कि जिनके लिए दिल्ली और आसपास के एरिया में जाना पॉसिबल हो, अगर आप उस आसपास के एरिया में हैं ही, फिर तो आपको इसे संभव बनाना ही चाहिए क्योंकि आपकी जरूरत होनी चाहिए। तो मनीष बंसल वहां गए और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है मेल में, मैं आप लोगों के सामने ज्यों का त्यों तो नहीं लेकिन उसका जिस्ट रखना चाहूंगा। मित्रों, बहुत पहले मैंने आप लोगों से इसी मोटिवेशन वाले सेक्शन में चर्चा की थी कि किस तरह से हमें ह्यूमन डिग्निटी का सम्मान करना चाहिए, यहां तक कि वस्तुओं की डिग्निटी का भी सम्मान करना चाहिए, और उस दौरान मैंने अपने जीवन के कुछ उदाहरण भी आप लोगों के सामने रखे थे कि किस तरह से हम लोगों के संस्कारों में बड़ों की रेस्पेक्ट करना शामिल हो गया है और यहां तक कि यदि गलती से भी हमारे पैर से किसी वस्तु को भी ठोकर लग जाती है तो थोड़ा सा अफसोस होता है और किताब वगैरह को जब ठोकर लगती है तब हम उसे प्रणाम करते हैं। मनीष बंसल ने भी ये सुनी थी और इसके बाद से उन्होंने लिखा है कि उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है और अपने बड़ों का सम्मान वे करने लगे हैं। फिर वे यूपीएससी गए। अब आप देखिए कि कैसे वो चीज जुड़ती है। मित्रों, वो यूपीएससी गए, यूपीएससी से एक स्टूडेंट बाहर निकले अपना इंटरव्यू दे करके, जो ऑलरेडी डीएसपी थे, मतलब आईपीएस में थे, वो अपना रैंक बढ़ा करके आईएएस में आना चाह रहे थे। उनसे उन्होंने बात की, मैं उन्हीं के शब्द पढ़ देता हूं ताकि कहीं ऐसा न हो कि कम्युनिकेशन गैप में कुछ गड़बड़ी हो जाए। देयर वॉज अ डीएसपी हु केम देयर फॉर रैंक इम्प्रूवमेंट टू बिकेम आईएएस, बट एज सी एंटर्ड द बोर्ड रूम सम हाउ सी फॉरगट टू ग्रीट द बोर्ड मेंबर्स एंड एज सी सिट्स बोर्ड सेज दैट यू कैन गो आउटसाइड, योर इंटरव्यू इज ओवर। ये हुआ, एक घटना हो गई मित्रों की, वो जैसे ही कमरे में एंटर की तो उन्होंने बोर्ड मेंबर्स को विश नहीं किया, उनका अभिवादन नहीं किया, इसके बाद वो वहीं सामने चेयर्स पर बैठ गई। इसके बाद बोर्ड मेंबर ने कहा कि आपका इंटरव्यू खत्म हो चुका है, आप बाहर जा सकते हैं। मित्रों, इसी को लेकर के मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाहूंगा। यही स्टूडेंट है जिसने चाहे वो हो सकता है स्टेट पुलिस सर्विस से हो या आईपीएस में ही पहले आ चुके हो, अभी पोस्टिंग हो डीएसपी के रूप में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे पहले उन्होंने इंटरव्यू फेस किया होगा, और इंटरव्यू फेस किया होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने विश नहीं किया होगा मेंबर को। ये तो एक सामान्य सी बात होती है कि जब भी हम अपने से बड़ों से मिलते हैं उन्हें विश करते हैं, और अगर बड़े से नहीं भी मिले, समान स्तर के लोगों से भी मिल रहे हैं, समान उम्र के लोगों से भी मिल रहे हैं, और यहां तक कि अपने छोटे से भी मिल रहे हैं, तो विश करने में हम छोटे नहीं हो जाते, विश करने वाला हमेशा बड़ा होता है। तो उन्होंने किया होगा, तो फिर यहां क्यों नहीं हुआ, यहां क्या हो गया? और इतनी सामान्य सी बात, इसका मतलब यह है मित्रों कि ये जो दूसरों का सम्मान करने की जो बात है या विश करने की बात है, अभिवादन करने की बात है, अगर आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिक उसका इनएविटेबल पार्ट हो गया है, उसका अंतर्निहित हिस्सा हो गया, उसी का हिस्सा हो गया है, उसके बिना उसका अस्तित्व ही नहीं है आपके व्यक्तित्व का या आपके व्यवहार का, ऐसी चूक आपसे नहीं हो सकती। लेकिन यदि आप बहुत सोच समझकर चीजों को करते हैं तो ऐसी चूक हो सकती है। जैसे हो सकता है कि उस स्टूडेंट को उस समय जब वो इससे पहले इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो जा रही थी को जो भी कह लीजिए आप, तो उस समय उनको ये बात ध्यान में रही होगी कि मुझे घुसते साथ ही विश करना है, और उन्होंने किया और उनको नंबर मिले होंगे या जो भी हुआ, अल्टीमेटली वो सिलेक्शन उनका हो गया। लेकिन चूंकि उस समय वो सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, तो वहां तो याद आ गया, लेकिन वो उनके व्यवहार का हिस्सा नहीं था, उनके संस्कारों में वो बात नहीं थी, इसलिए यहां ऑटोमेटिक तरीके से वो चीज उभर कर नहीं आई। या आप इसे ये भी कह लीजिए कि हो सकता है कि आईपीएस में आने के बाद या स्टेट पुलिस सर्विस में आने के बाद एक तरह का ईगो पैदा हो गया हो बाद में, और लग रहा कि यार अब हम तो कम नहीं है, किससे कम है, वो ईगो इतना ज्यादा हावी हो गया हो। जनरली ऐसा हो जाता है मित्रों कि जैसे ही थोड़ी सी सफलता मिलती है, पता नहीं हम अपने आप को क्या तोपचंद मानने लगते हैं। तो जब ऐसा ईगो आ जाएगा, तो ईगो तो दोस्तों दूसरों को हर्ट करने में ही संतुष्टि पाता है कि हम कैसे दूसरों को हर्ट कर सके, दूसरों को चोट पहुंचा सके, दूसरों को नीचा दिखा सके, ताकि हम अपने आप को ऊपर समझ लें। तो ये भी हो सकता है, वी डोंट नो व्हाट हैड हैपन, हमें नहीं मालूम है कि क्या हुआ। लेकिन अगर हम व्यक्तित्व का विश्लेषण करें तो कुछ इसी तरह की बातें मिलेंगी। मित्रों, इसके माध्यम से केवल मैं आप लोगों को यह सतर्क करना चाह रहा हूं, या कह लीजिए कि सलाह देना चाह रहा हूं, कि जो हमारा जो व्यक्तित्व है, जो या कह लीजिए जो इंटरव्यू की तैयारी है, वो 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने, साल भर में नहीं होती है। वो तो आपके व्यक्तित्व का एक तरह से आईना है, पूरा व्यक्तित्व वहां आपका छाया की तरह या बिल्कुल शीशे की तरह सामने दिखाई देता है, और वो वही वहां दिखाई दे सकता है, दिखेगा जो आपके अंदर होगा। इसीलिए मित्रों, जो मैं छोटी 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 बातें आप लोगों से करता हूं, मैं चाहता हूं कि उन्हें आप लोग व्यवहार में लाएं, वो छोटी छोटी बातें आपके संस्कारों में शामिल हो जाएं, आपकी चेतना के हिस्से बन जाएं, ताकि वो ऑटोमेटिक हो, आपको सोचकर करना ही न पड़े। और यही रियल में व्यक्ति का तत्व होता है, जिसे मैं व्यक्तित्व कहता हूं, इसेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है। अदरवाइज मित्रों, छोटी सी गलती हमारी पूरी जिंदगी भर की असफलता का कारण बन सकती है। मुझे नहीं मालूम, अगर उन्होंने ये गलती नहीं की होती तो हो सकता है उनका इंटरव्यू अच्छा गया होता, और हो सकता है कि वो कहीं दूसरे और बहुत ऊंचे स्तर पर उनका सिलेक्शन हो चुका होता। ये छोटी सी चीज है, लेकिन छोटी सी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मित्रों, अभी जो मैं क्वांटम फिजिक्स की जो मैं बात कर रहा हूं, जिसके सिद्धांतों की जो बात कर रहा हूं, ये सच पूछे तो इसी तरह से ही हमारे जीवन से रिलेटेड है। हमें नहीं पता लगता है कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे होता है, कौन अचानक आता है कि हमारी मदद कर लेता है, या कौन अचानक ऐसा आ जाता है जो हमें धक्का दे देता है, हम नहीं सोच रहे थे लेकिन थोड़ी देर बाद हम अपने को गड्ढे में पाते हैं, हमें नहीं पता लगता। और इनकी कोई सच पूछे तो बहुत वैज्ञानिक उस तरह की भौतिकवादी व्याख्याएं भी नहीं की जा सकती, लेकिन चीजें तो होती हैं, और अगर होती हैं तो इनके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होता ही होगा। अब ये बात अलग है कि हमारी अपनी सीमा क्या है, हम उनके कारणों को जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तो मित्रों, मैं अभी उसी क्वांटम फिजिक्स की ही बात आप लोगों से कर रहा हूं और खासकर इसलिए कर रहा हूं, फिर आप चेतना और व्यक्तित्व की बहुत अंदरूनी परतों को समझ सकेंगे, उनको फील कर सकेंगे, महसूस कर सकेंगे और फिर देखेंगे कि आप में कैसे एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत होती है। तो मित्रों, मैं क्वांटम फिजिक्स के दो जो बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं उनकी चर्चा आप लोगों से कर चुका हूं, आज मैं तीसरे नियम का उल्लेख करूंगा। और वो तीसरा नियम है मित्रों कि दो उप आणविक कण, यानी कि दो सब एटॉमिक एटम्स हैं, सब एटॉमिक कण हैं, पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो अनंत दूरी के बावजूद उनमें जो डिस्टेंस है, एक कण एक स्थान पर है और दूसरा कण दूसरे स्थान पर है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें दूरी इतनी ज्यादा है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं, आप उतनी आप दूरी की कल्पना कर लीजिए, अनंत दूरी के बावजूद संकेतों का आदान प्रदान किए बिना ही अब वो आपस में कोई संबंध स्थापित नहीं कर रहे हैं, कोई सिंबल नहीं भेज रहे हैं, कोई संकेत कोई इशारे नहीं भेज रहे हैं, यानी कि उन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई जुड़ाव है ही नहीं। संकेतों का आदान प्रदान किए बिना ही सह संबंध स्थापित करके संवाद कर सकते हैं, मतलब कोई संकेत तक नहीं भेज रहे हैं। देखिए, जैसे हम अगर मैं आप मोबाइल से मान लीजिए कि अपनी जगह से 1000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर दूरी में बात कर रहे हैं तो संकेत आप भेज रहे हैं, बकायदे आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जो मोबाइल है वो आपके साउंड को दूसरी तरह के वेव्स में कन्वर्ट कर रहा है, फिर आपका ये वेव्स सैटेलाइट तक जा रहा है, फिर वो सैटेलाइट उस वेव्स को वहां भेज रहा है जहां आप अपना मैसेज भेजना चाहते हैं, फिर वो उस वेव्स को साउंड में कन्वर्ट कर रहा है, फिर वो साउंड वहां सुनी जा रही है। एक सामान्य मैं प्रोसेस बता रहा हूं, लेमैन की भाषा में बात कर रहा हूं। तो यानी कि यहां संकेत हैं, कुछ न कुछ माध्यम है, लेकिन यहां वो कह रहे हैं कि अनंत दूरी के बावजूद देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ डिस्टेंस, कितनी भी दूरी क्यों ना हो, अरबों मील दूर हम क्यों ना हो, चाहे हम पता नहीं यहां से जो सबसे दूरस्थ आप कह लीजिए कि जो ग्रह है वहां पर कोई क्यों ना हो, के बावजूद संकेतों का आदान प्रदान किए बिना उनको किसी उसकी जरूरत नहीं है कि हमको समझने के लिए किसी हम मीडियम को चुने, सह संबंध स्थापित करके एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। ये क्वांटम फिजिक्स का थर्ड लॉ है मित्रों, यानी कि ये कुछ ऐसी अद्भुत चीज है जिसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है, उसको कोई भी भौतिक सहारा नहीं चाहिए। जैसे मित्रों, एक मैं छोटी सी बात बताता हूं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, फिल्मों में तो आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा, मां और बेटे के बीच में ये अक्सर होता है। और मुझे बताया गया है कि मेरे इस ऑडियो को बहुत से पेरेंट्स भी सुनते हैं, तो उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और उन वो शायद अपने अनुभव को इससे जोड़ सकेंगे, क्योंकि ये जो सब बताने में जा रहा हूं ये मां और बेटों के बीच में, या बेटी भी है उसमें शामिल है, सबसे ज्यादा होता है, मां और संतान के बीच में सबसे ज्यादा होता है। मान लीजिए कि बेटा यहां से बोस्टन में पढ़ रहा है, राइट, बेटे को कोई तकलीफ हो गई, बेटा बहुत परेशान है या बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बहुत संकट में फंस गया, तो आप देखेंगे कि मां जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बैठी हुई है अपने को डिस्टर्ब फील करने लगेगी, पता नहीं उसको खाना अच्छा नहीं लगेगा, मन अनमना अनमना सा होगा, शरीर ढीला ढीला सा होगा, उसे पूछिए कि क्या हो रहा है अम्मा, क्यों ऐसा लग रहा है, बोले पता नहीं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, बस सिर्फ उसका अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि बेटे की वो जो परेशानी है वो यहां मां महसूस कर रही है, और इन दोनों के बीच में कोई मोबाइल पर बात नहीं हुई है, देयर इज नो कॉन्टेक्ट एट ऑल, कोई संबंध नहीं है, और दूरियां तो अब मनुष्य का शरीर जितनी दूर रह सकता है उतनी ही दूर रहेगा, संबंध स्थापित हो सकता है। मुझे कभी कभी लगता है मित्रों कि जो हम ग्रहों के प्रभाव की बात करते हैं कि इसका शनि दोष हो गया है, फलाना दोष हो गया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन क्या सच में वो ग्रह हमारे ऊपर इतने ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, ये अब यह अध्ययन का विषय है, कैसे अध्ययन होगा, कब अध्ययन पूरा होगा, ये बात अलग है, लेकिन एक सोचने की बात तो है। तो क्या हमारे ऋषि मुनियों ने जो इस तरह की बातें की, कल्पना की, उनके पीछे कोई विज्ञान है? लेकिन क्वांटम फिजिक्स के इसको देखने के बाद तो लगता है कि हां, कोई ऐसा विज्ञान है। तो मित्रों, इस जो तीसरे नंबर की थ्योरी है, इसके आधार पर मैं आपसे सिर्फ एक अर्ज करना चाहूंगा। हम इसके डिस्कशन में ना पढ़ें, हमको फिजिक्स नहीं पढ़नी है, हमको तो केवल एक मोटिवेशन पार्ट में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, अपनी क्षमताओं को कई कई गुना आगे ज्यादा बढ़ाना है, एक अपने जीवन को जितना अच्छा से अच्छा कर सकते हो, जितना अच्छा से अच्छा जी सकते हो, उसकी कोशिश करनी है। तो मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि जरूरत पड़ने पर आपको कहां से मदद मिलेगी, कहां से कौन आ जाएगा और आपकी मदद करेगा, या कहां से कौन आ जाएगा और हमको खत्म कर देगा, हम नहीं जानते। क्योंकि ये जो सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं, ये पता नहीं कहां कहां रह रहे हैं और कौन कब बिना किसी कॉन्टेक्ट के हमारे पास आ सकता है, हमें बता सकता है, हमारी बुद्धि को बदल सकता है। ऐसा नहीं होगा कि हमें कोई हाथ धक्का दे देगा, वो तो चेतना के स्तर पर अपना प्रभाव डालेगा। हमारी बुद्धि जरा सी भ्रष्ट हुई और हम कुछ का कुछ कर बैठेंगे। तो मित्रों, इस फर्स्ट पार्ट में मैं आज इतनी चर्चा करूंगा, फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब मैं आता हूं एआईआर न्यूज पर। मित्रों, एआईआर न्यूज में आज कुछ बातें हैं और महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर के। मैं इसके बारे में दो तीन चीजें आपसे चर्चा करना चाहूंगा मित्रों। पहला तो ये कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, आप देख रहे हैं कि इसको कितना ज्यादा, अभी की जो सरकार है कितना ज्यादा महत्व दे रही है, और ये माना जाता है कि अगर ये पारित हो जाएगा, ये बिल पारित हो जाएगा, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक वृद्धि दर 1% जीडीपी जो है ऑटोमेटिक ही हमारी बढ़ जाएगी। पूरा का पूरा हमारा जो देश है वो एकीकृत बाजार बन जाएगा, पूरे के पूरे देश में ऑलमोस्ट वस्तुओं की कीमत लगभग एक जैसी हो जाएगी। तो इन सब को लेकर के हम लोगों ने काफी चर्चा की है। मित्र, 2013 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर बातचीत की शुरुआत हुई थी और उस साल इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगर आप जनरल स्टडीज का क्वेश्चन पेपर नंबर 3 उठा करके देखें तो उसका क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें सीधे सीधे पूछा गया था। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं वो प्रश्न। भारत में माल व सेवा कर ब्रैकेट में दिया हुआ है जीएसटी प्रारंभ करने के मूलाधार की विवेचना कीजिए। इस व्यवस्था को लागू करने में विलंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए 200 शब्द। डिस्कस द रैशनल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन इंडिया। ब्रिंग आउट क्रिटिकली द रीजन फॉर द डिले इन रोल आउट फॉर इट्स रेजिम। ये उसमें दिया हुआ है मित्रों। 2014 में इसको लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं है। अब 2015 में चूंकि फिर से इस पर बातचीत हो रही है, लगातार हमारे फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट के लीडर्स से, अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, और अब जबकि लोकसभा में ये इसका विधेयक पेश किया जा चुका है, इस पर बहस भी हो रही है, देखिए क्या होता है। और सरकार ने कमिट किया है कि 2016 में का जो फाइनेंशियल ईयर होगा 2016-17 का, उसमें इसे लागू कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी प्रतीक्षा की जा रही है, इसको बहुत अहमियत दी जा रही है, खासकर हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा एजेंडे का एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए मुझे लगता है कि 2015 में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इस पर आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कल दूरदर्शन न्यूज पर इस पर बहुत अच्छा डिबेट आ रहा था, उसमें एक जर्नलिस्ट थे और एक टैक्स के एक्सपर्ट थे, मैंने ये डिबेट सुनी और सबसे अच्छी बात उसमें यह थी कि बहुत ही सामान्य तरीके से उदाहरण दे देकर के वो इस जीएसटी के पूरे मामले को समझा रहे थे। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, और सही बात यह स्टूडेंट को इसी फॉर्मेट में समझाया भी जाना चाहिए, तभी वो सिविल सर्विस के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिविल सर्विस में, उनके उत्तर भी दे सकेगा। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी, और जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के रूप में जिन्होंने ऑप्ट किया है उनके लिए तो फिर ये है ही। अब आप देखें कि जब आप न्यूज सुन रहे होंगे तो चलिए अब इस पर बहस चल रही है, हम देखते हैं आगे क्या होगा। मैं काफी आपको आर्टिकल भी प्रोवाइड कर चुका हूं, इसलिए यहां दोहरा करके अपना समय उसमें लगाने का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है। मैं केवल एक दो चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हम इसके माध्यम से और क्या तैयारी करें। आपने न्यूज की शुरुआत में सुना कि इसे स्थायी समिति को भेज देना चाहिए, लेकिन लोकसभा के उपाध्यक्ष ने मना कर दिया कि नहीं भेजेंगे। मित्रों, ये समितियां क्या होती हैं, इसके माध्यम से आपको पॉलिटिकल साइंस की समझ अच्छी हो जानी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस नहीं, मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन की समझ होनी चाहिए। देखिए, हमारी जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर के संसद बनती है। उसमें जो लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारे सदन है। समितियां क्या हैं, जो समितियां हैं आप कह लीजिए लोकसभा और राज्यसभा की मदद करने वाली संस्थाएं हैं। मैं देखिए बिल्कुल लीगल टर्म में आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक समझाने के टर्म में आपसे बात कर रहा हूं। एक कमेटीज हैं, संस्थाएं हैं, जो भी कह लीजिए, जो लोकसभा और राज्यसभा अपनी अपनी मदद के लिए गठित करते हैं। संविधान में इनके लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं है। इनका जो पूरा का पूरा जो गठन होता है, जो इनकी नियमावली होती है, इनके जो रूल्स रेगुलेशन होती हैं, वो लोकसभा ही बनाते हैं और राज्यसभा ही बनाते हैं। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा, एक तो उनके पास काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है, दूसरा वहां उसके एक्सपर्ट भी नहीं होते, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसके लिए थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की समझ चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था की भी बहुत समझ चाहिए। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इनके बारे में जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। हाँ, ये जरूर है कि दोनों सदनों में कुछ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे होंगे जिन्हें इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी समझ होगी, एटलीस्ट कॉमन सेंस तो उनमें बहुत अच्छा होगा ही। तो और फिर इनके पास काम का बोझ इतना होता है कि हर इश्यू के बारे में ये बहुत डिटेल्स में काम चर्चा नहीं कर सकते, डिस्कशन नहीं कर सकते। तो इन दोनों सदनों ने अपनी अपनी मदद के लिए कुछ कमेटीज बनाई है, राइट? मैं देखिए आपको केवल बेसिक्स बता रहा हूं, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि बेसिक आप समझिए कि बेसिक्स क्या होते हैं। तो ये कमेटी दो तरह की होती है, हम ज्यादा इधर उधर की बातों में न जाएं, दो तरह की होती है। एक है स्थायी समिति, परमानेंट आप समझ ले, स्टैंडिंग कमेटी समझ लीजिए, जो बिल्कुल स्थायी रहेगी, परमानेंट रहेगी, नाम से ही पता है। और दूसरा है, जी दूसरे को हम कहते हैं अस्थायी समिति कह लीजिए, या इसको आप कह लीजिए कि हम तदर्थ समिति कहते हैं, एडहॉक कमेटी। देखिए नाम से बहुत स्पष्ट है कि जो स्थायी समिति होती है वो परमानेंट होती है। परमानेंट होने का मतलब ये नहीं कि फिर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे एक साल के लिए एक समिति बनी, इसके बाद उसके मेंबर्स दूसरे हो गए, फिर लेकिन वो कंटिन्यू अपना काम करती रहेगी, तो स्टैंडिंग कमेटी स्थायी समिति। दूसरी होती अस्थायी समिति, एडहॉक कमेटी, जिसको हम तदर्थ समिति भी कहते हैं। वो ऐसी समितियां होती हैं जो जब जरूरत पड़ती है किसी मामले के लिए तो बना दी जाती है, और जब वो काम खत्म हो जाता है तो उस समिति को खत्म कर दिया जाता है, फिर जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी मामले पर जांच करानी है तो तदर्थ समिति बना दी जाएगी, भैया इसका जांच कर लीजिए इसकी, और जांच करने के बाद इसकी रिपोर्ट दे दीजिए, फिर वो खत्म हो जाएगी, राइट? अब आप देखें कि चूंकि ये समितियां लोकसभा और राज्यसभा बनाती हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बनाते हैं और राज्यसभा के उपसभापति बनाते हैं, सभापति बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो कमेटी अपनी रिपोर्ट भी देंगी, याद रखिए ये लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को देंगी, है ना, ये जो रिपोर्ट देंगी, राइट? तो अब इसमें ये बात आई कि स्थायी समिति को सौंप दी जाए कि भैया ठीक है, जीएसटी बिल में कुछ मामले अभी भी डिस्प्यूट वाले हैं, सब काफी कुछ मामले तो सुलझ गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो डिस्प्यूट वाले हैं उनको सुने और एक समिति फिर फैसला करे। देखिए समिति को सौंपे, क्यों सौंपा जाए, इसके दो रीजन होते हैं मित्रों। एक तो यह है कि इसमें एक्सपर्ट लोगों को रखा जाएगा जो उस मामले के जानकार हों। दूसरी बात यह होती है कि जो समिति होती है इसमें सभी पार्टी के सदस्य होते हैं ऑलमोस्ट, ये नहीं कि अब छोटी छोटी पार्टियां जिनके दो चार पांच मेंबर ही हैं तो उनको कितनी समितियों में आप रखेंगे। तो इस तरह से राजनीतिक वैचारिक दृष्टि से भी ये एक तरह से बैलेंस तरीके से चीजों को सोचती है और उस पर मंथन करती है, तो एक तरह से एक्सपर्ट व्यू मिल जाता है पार्लियामेंट को, तो स्थायी समिति को सौंप दिए जाए ये बात कही गई ताकि वो इस पर विचार करे। अब आप देखें कि इस पर फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, अब स्थायी समिति को आप सौंप देंगे, फिर वो स्थायी समिति इस पर विचार करेगी, फिर वो पार्लियामेंट में आएगा क्योंकि वो अपने लोकसभा के अध्यक्ष को सौंप देंगे अपना अपनी रिपोर्ट, फिर लोग फिर पार्लियामेंट का सेशन होगा, उस पर डिस्कशन होगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यही कहा कि फिर हमारी जो डेडलाइन है कि हम 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में इसको शुरू कर देंगे, वो नहीं हो पाएगा और हमारे बेवजह नुकसान होगा, नंबर एक। नंबर दो मित्रों, याद रखिए कि लोकसभा के उपाध्यक्ष ने इसके लिए मना किया, मतलब सरकार यहां नहीं है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं कहा कि अगर वहां के मेंबर डिमांड कर रहे थे कि नहीं नहीं अब इस जीएसटी बिल को स्थायी समिति को सौंप दिया जाए, प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। जो प्रवर समिति है दोस्तों, ये अस्थायी समिति का एक प्रकार है है ना, अस्थायी समिति है, राइट। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने यह नहीं कहा कि नहीं हम नहीं सौंपेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर तो केवल रिक्वेस्ट करते रहे, बताते रहे कि ऐसे करने से क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो इसीलिए आप लोग इसको पारित कर दीजिए। लेकिन निर्णय फाइनेंस मिनिस्टर नहीं करेंगे, निर्णय सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सदन में अगर कोई बहस हो रही है तो उसका निर्णय करने का अधिकार किसको है? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, मतलब उनका है जो बहस के समय चेयर्स पर होंगे। अगर लोकसभा के अध्यक्ष होंगे तो वो, उपाध्यक्ष होंगे तो वो, जो भी समय सदन का संचालन कर रहे होंगे उनको ही अधिकार है कि उसके बारे में वो क्या फैसला करते हैं। तो इसीलिए आपने न्यूज में सुना कि लोकसभा के उपाध्यक्ष ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो ये कुछ बहुत ही टेक्निकल चीज है, बहुत बेसिक चीजें हैं, आपको बहुत अच्छे से इनकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि लिखने के दौरान, उत्तर लिखने के दौरान हमसे इस तरह की चूक हो जाती है और फिर पता लगता है कि वो हमारे उत्तर को बहुत कमजोर कर देता है। और यहां तक मित्रों कि अब जो सिविल सर्विस का प्री का जो पैटर्न हुआ है उसमें इस तरह की जो टेक्निकल चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो ऑप्शन के रूप में दे दी जाती हैं। तो अगर आपकी बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, बहुत अच्छी समझ नहीं है, तो वहां भी गलती होने की संभावना रहती है, कह लीजिए आशंका रहती है। तो मित्रों ये इसके माध्यम से मुझे थोड़ी सी आपसे बात करनी थी। अब जो दूसरी न्यूज थी, जो सेकेंड न्यूज थी, वो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को लेकर के थी। आपने देखा कि इसे कैबिनेट ने पारित कर दिया है। इसके लिए मैंने आपको कल एक जनसत्ता की क्लिपिंग्स भी प्रोवाइड की थी, मुझे विश्वास है कि आपने वो क्लिपिंग्स देख ली होगी। बेसिकली क्या है कि कुछ बॉर्डर एरिया की जमीन है भारत और बांग्लादेश के बारे में, तो ये कहा जा रहा है कि ये जमीन आप ले लीजिए, उसके बदले में हमको ये जमीन दे दीजिए, तो हमारे ये जो बॉर्डर एरियाज हैं वो सही हो जाएंगे। तो भारत को जो है ना बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय की कुछ जमीन हैंड ओवर करनी है, बदले में उन्हें कुछ जमीन मिलेगी। तो एक कैबिनेट ने पारित कर दिया कि ठीक है, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी जो एडिटोरियल में लिखा गया है वो ये है कि इसमें असम की जमीन को नहीं रखा गया है। तब इन तीन राज्यों को, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय के लगभग 2000 एकड़ जमीन तो हम बांग्लादेश को देने को तैयार हो गए हैं, लेकिन असम में जो 268 एकड़ जमीन है वो हम देने को तैयार अभी नहीं हुए हैं। उसका कारण फिर वो राजनीति की बात उन्होंने की है कि वहां की जो बीजेपी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी है असम में, वो इसका विरोध कर रही है, वो क्योंकि उसको लगता है कि अगर हमने ये जमीन बांग्लादेश को सौंप दी तो उसके खिलाफ वहां का जनमत हो जाएगा, फिर जो वहां चुनाव होने वाले हैं तो उसमें उनको वोट नहीं मिलेंगे। इसको लेकर के ये एडिटोरियल कमेंट है, इसको आज मैं फिर से डाल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर आपको ध्यान थोड़ा सा देना चाहिए और आज न्यूज में भी था। इसे मैं दोबारा डाल रहा हूं, इसे आप देख लेंगे और बेहतर होगा कि इसे आप अपने पास कुछ समय के लिए रख भी लें। इसके बाद मित्रों फिर दो छोटी छोटी खबरें थी, लेकिन देखिए होता क्या है कि आपको सिविल सर्विस में की तैयारी के लिए बस इनको अपने ध्यान में रखना होता है। एक तरह से जो मधुमक्खी का काम करना पड़ता है, जैसे मधुमक्खी पता नहीं कितने फूलों पर बैठती है और फिर जाकर के शहद बनाती है, ठीक वही काम हमको भी करना होता है सिविल सर्विस की तैयारी करने वालों को, कि सब चीजें हम सुनते रहते हैं, चीजों को इकट्ठा करते रहते हैं, वो सब हमारे दिमाग में होती हैं और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो दिमाग में जो चीजें इकट्ठी हैं फिर आ करके फिर शहद की तरह उत्तर के फॉर्म में कॉपी पर आ जाती हैं। एक तो ये था मित्रों कि जो जबलपुर में हाई कोर्ट है, जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है जबलपुर में, उसने कहा है कि राज्यपाल जब अपने पद पर हो तो उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती, संवैधानिक उनको सुरक्षा प्राप्त है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो इतने बड़े बड़े पदों पर जो लोग होते हैं उनकी प्रतिष्ठा की बात होती है, और प्रतिष्ठा से भी ज्यादा बड़ी बात यह होती है मित्रों की वो बड़े बड़े निर्णय लेते हैं, ऐसी स्थिति में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी होती है, तो पता नहीं किस वजह से कौन सी चीज किस रूप में की जाए, तो वो सुरक्षा प्रदान की गई है। तो एक ये है कि किस तरह से जो हमारा संविधान है वो न केवल हमारे राजनेताओं को ही बल्कि ब्यूरोक्रेट्स को भी कुछ इस तरह की सुरक्षाएं प्रदान करता है, और कुछ तो पद ही ऐसे बनाए गए हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर को देखिए, यूपीएससी के मेंबर्स एंड चेयरमैन को देखिए, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देखिए, ताकि वो बहुत पूरी निर्भीकता के साथ अपने दायित्वों को पूरा कर सके। और मित्रों अंतिम एक स्टेटमेंट ये था न्यूज में कि हमारे जो मिनिस्टर हैं रविशंकर जी, उन्होंने कहा है कि एक कमिट सरकार के का एक ओपिनियन बताया है कि जो नेट न्यूट्रलिटी है, जो नेट की जो निरपेक्षता है, उसके प्रति भारत सरकार प्रतिबद्ध है और उसकी कोशिश होगी कि लोगों को नेट की जो फैसिलिटी है सभी को अवेलेबल प्राप्त होती रहे। तो ये चार छोटी छोटी खबरें थी मित्रों आकाशवाणी की। अब मैं आता हूं तीसरे चरण पर जो न्यूज़पेपर का चरण है मित्रों। बाकी तो क्लिपिंग्स सारी हिंदी की हैं, एक क्लिपिंग्स इंडियन एक्सप्रेस की है और मैं समझता हूं कि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लिपिंग है जो अल नीनो के प्रभाव को लेकर के लिखा गया है कि भारत पर अल नीनो का कितना प्रभाव पड़ता है। इसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं और बहुत ही सरल इंग्लिश में है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो अल नीनो का प्रभाव है वो जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक में जो वाटर की हीटिंग होती है वहां से उत्पन्न होता है और नो डाउट उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो भारत पर जो अल नीनो का प्रभाव है उसमें एक और फैक्टर काम करता है और वो फैक्टर है इंडियन ओशन का, हिंद महासागर, जब वो भी फैक्टर काम करता है जिसको जिसकी एक टर्मिनोलॉजी है कि इंडियन ओशन डिपोले। अब एग्जैक्ट इसका उच्चारण क्या होगा मुझे नहीं मालूम, इसमें लिखा DIPOLE, इसको आप इंडियन नैनो कह सकते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भारत में वर्षा का निर्धारण होता है, ये इसमें इन्होंने कहा है। तो ये फैक्टर मुझे अच्छा लगा क्योंकि पिछले साल अगर आप जनरल स्टडीज का पेपर उठा करके देखें तो इस तरह का पूछा गया कि एल नीनो से भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, फसलों पर, कृषि पर, इस तरह का कोई प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपके लिए थोड़ी सी मतलब चूंकि नई जानकारी इसमें मिली है तो मैं समझता हूं कि आपके लिए उपयोगी है। इसके बाद फिर उन्होंने लास्ट में बताया है कि हमारी खेती पर कैसे मानसून का प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए सरकार को क्या ठोस कदम उठाने चाहिए और इसको लेकर के हम लोगों ने काफी बातें की हैं। वही है कि कम वर्षा वाले बीज उपलब्ध कराई जाएं, किसानों का बीमा कराया जाए, किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करके जो फसल का जो नुकसान होता है फट से उसका निर्धारण कर लिया जाए और जो मुआवजा दिया जाना है किसानों को उनके खाते में तुरंत प्रोवाइड कर दिया जाए, एक बहुत स्ट्रांग बीमा पॉलिसी लेकर के सरकार आए। तो इस तरह की ही बातें उन्होंने सुझाई हैं, तो ये मैं नॉलेज सेंटर पर डाल रहा हूं मित्रों, आप इसे देख लेंगे। दोस्तों अब मैं आता हूं इसके बिल्कुल अंतिम चरण पर, जो आज के हमारा जो ऑडियो है उसके बिल्कुल अंतिम चरण पर। एक दो बातें मैं आप लोगों से पहले करना चाहूंगा कि दोस्तों कल मैंने जो आपको एक स्टूडेंट के बारे में बताया था जो हमारी एकेडमी के सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं, अभी MIT अमेरिका में है, कल मैंने उनका आपको मेल भी पढ़कर सुनाया था, तो मैंने नाम उसमें गलत लिया था और मैंने एप्रिहेंशन, मुझे आशंका थी कि नाम कहीं कुछ गलत होगा। उनका मेल आ गया, उन्होंने लिखा है कि मैंने मेल में नाम लिखा था, तो मैं उनसे माफी चाहूंगा। असली में होता क्या है कि मैं डायरेक्ट मेल नहीं देखता हूं, मेरे पास प्रिंट के फॉर्म में मेल आता है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा रहा हो कि उनका नाम वाला हिस्सा उस एक उस ठीक पहले के पेज के लास्ट में रह गया हो और सेकेंड पेज में उनका मैसेज हो और वो मैं पढ़ गया हूं, तो इस गलती के लिए मैं माफी चाहूंगा। तो उनका नाम है राहुल राय, वो जौनपुर से है, उत्तर प्रदेश से, उतना मुझे ध्यान था कि वो जौनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, राहुल राय हैं। तो राहुल राय चलो फिर से बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से तुम्हें इस सफलता के लिए, खासकर तो तुमने वहां MIT में प्रेजेंटेशन दिया, और ईश्वर तुमको और अधिक शक्ति प्रदान करे, आत्मविश्वास प्रदान करे, विवेक प्रदान करे, ब्रिलियंसी प्रदान करे, प्रखरता दे, ताकि तुम अपना ही नहीं अपने परिवार, अपने गांव और अपने प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर सको आगे चलकर। मित्रों ने मेरे पास एक और मेल आया है रंजीव कुमार सिंह का जो चंडीगढ़ से हैं, ये भी सेकेंड बैच के स्टूडेंट रहे हैं, इन्होंने काफी भावप्रवण मेल लिखा है और काफी डिटेल में लिखा है कि क्लास से आने के बाद उनमें क्या क्या बहुत अच्छे सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। तो रंजीव इसके लिए मैं बहुत बहुत तुमको बधाई देता हूं और मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करो, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परिवर्तन का ये दौर लगातार जारी रहे, कभी थमे नहीं। मित्रों एक मेल रजिया बेगम का है जो खासकर AFE क्लब के बारे में है, तो मैं AFE क्लब के सभी मेंबर्स को ये बता दूं कि अब हम लोग धीरे धीरे आप लोगों की चीजें जब इकट्ठी होती जाएंगी तो उसके लिए AFE क्लब के जो संस्थापक मेंबर हैं उन्हीं के लिए ऑडियो डालूंगा। उन्होंने डिटेल में रजिया ने बताया है कि क्या क्या एक्शन उन्होंने अभी तक लिए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो मोबाइल नंबर है AFE के मेंबर्स को दे दिया जाए, लेकिन चूंकि ये फोरम AFE क्लब का फोरम नहीं है, इसीलिए मैं अभी उनका नंबर यहां नहीं दे रहा हूं। जो एक्सक्लूसिव जो एएफई क्लब का जो ऑडियो होगा उसमें मैं उनका नंबर बताऊंगा। तो मित्रों, अब ईमेल मेरे पास काफी आए हैं और उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इसी में कुछ नाम हैं, राहुल खान जो भरतपुर से हैं, भरत गुप्ता जोधपुर से हैं, विवेक सागर रामगढ़ झारखंड से हैं, आशीष कुमार, संतोष गुप्ता, दीपक यादव और रंजीव कुमार सिंह चंडीगढ़, मैंने अभी उनका नाम लिया था। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस ऑडियो को यहीं समाप्त करते हैं, कल हम लोग फिर मिलेंगे। मेरा नमस्कार स्वीकार करें, नमस्कार।